5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम कल सामने आ जाएंगे। इस बीच कई एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा है कि सर्वेक्षणों के जरिए धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है। काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी की आशंका जताते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं,
अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी।
अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहते हैं,
चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे अपराधियों आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के चार यार आतंकी गुंडा माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए।
गोवा में किसी को भी बहुमत नहीं मिलने की बात कही जा रही है। इसे देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपने भावी विधायकों को बचाने का प्रयास अभी से शुरू कर दिया है। गोवा के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में सरकार और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। मंगलवार को भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकार पर विरोधी नेताओं के विरुद्ध साजिश रचने का आरोप लगाया। देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि सरकारी वकील भाजपा के आधा दर्जन नेताओं को फसाना चाहते हैं।
विरोधकांच्या विरुद्ध षडयंत्र तयार करण्याकरता प्रमुख अशा प्रकारची ती जागा आहे आणि मग आपण या ठिकाणी जर बघितलं।
इधर मंगलवार को शिवसेना से जुड़े नेताओं के यहाँ आयकर के छापे पड़े हैं। इससे भड़की शिवसेना ने केंद्र की भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। शिवसेना नेता संजय राउत कहते हैं कि ऐसे छापे आगे भी पड़ते रहेंगे। संजय राउत का आरोप है कि ये छापे सरकार पर दबाव डालने और उसे गिराने के लिए डाले जा रहे हैं।
क्या इस देश में और राज्यों में कोई नहीं मिलता जहां सेंट्रल एजेंसी जाकर सवाल पूछे, भेड़ करे, देश को हिसाब किताब दे? सिर्फ शिवसेना या तृणमूल कांग्रेस? ये तो सबको मालूम है, ये सरकार गिराने की तो साजिश है, सरकार को दबाव में लाने की। शिवसेना के नेतृत्व में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन हुआ है, उनकी सरकार है, उनको दबाव में लाकर ये सरकार अनस्टेबल अस्थिर करने के लिए, सरकार गिराने की, ये बहुत बड़ी साजिश है।
मंगलवार को देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐसे ही एक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य महिला आयोग की जमकर सराहना की।
आज दिल्ली महिला आयोग एक तरह से पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग को भी सीखना चाहिए कि महिला आयोग कैसे चलता है, दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयोग ने राज्य की हर महिला के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की है।
आज दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली में एक सबसे बड़ी चीज जो की है, दिल्ली की हर महिला के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा की है। दिल्ली की महिलाओं को यह लगता है कि अगर मेरे साथ कहीं कुछ हुआ तो मैं 181 पे फोन कर लूंगी।
और अब चर्चा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की, जिन्हें निकालने का काम लगभग पूरा हो गया है। मंगलवार को सुमी शहर में फंसे लगभग 700 छात्रों को निकाल लिया गया। इन्हें ऑपरेशन गंगा के तहत चलाए जा रहे विमान सेवा के जरिए भारत लाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 17,000 से अधिक छात्रों को भारत पहुंचाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर कहा,
क्योंकि एडवाइजरीज दी गई, वी वर एबल टू मूव 5-6,000 पीपल आउट, तो टोटल फिगर जो था वो 6,000 कम हो गया। एडवाइजरी के कारण मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू हुए 24 फरवरी को, तो 24 फरवरी में सरकार में जो तैयारी थी, आई थिंक इट वॉज एक्सेप्शनल कि सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सब लोग मिलके एकदम निर्णय लिया और 26 से मुझे लगता है फ्लाइट्स जो इवैक्यूएशन फ्लाइट शुरू हो गई। पर उसके दौरान आप एक देखिए, एक कंट्री जिसमें वॉरलाइक कंडीशन है भी, देयर हैज बीन मिलिट्री एक्शन, वहां से बच्चों को निकालना, कुछ लोग खुद आए, कुछ लोग जो ग्रुप्स में थे उनको हम गाइड कर पाए, कुछ लोग ऐसे थे हु वर ऑन देयर ओन, दे वर ऑन देयर ओन, सो एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट।
केंद्र सरकार ने 27 मार्च से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन फिर से शुरू करने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि यात्रा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। देश में कोरोना के मामलों में आई गिरावट के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से 2 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगा दी गई थी। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।